हम इन दिनों तीमोथियुस की पत्री का अध्ययन कर रहे हैं और आपको मालूम है तीमोथियुस की पत्री विशेष अभिप्राय से लिखी गई है और उसका अभिप्राय यह है कि परमेश्वर की कलीसिया किस प्रकार से परमेश्वर कलीसिया को देखता है और कलीसिया में सेवा को किस प्रकार से देखता है, किस प्रकार से कलीसिया के विश्वासियों का जीवन होना है और किस प्रकार से कलीसिया में सेवकों का जीवन होना है। और इस चीज को बहुत ही स्पष्ट रूप से हम पहले अध्याय से देखते चले आ रहे हैं और पहले अध्याय में हमने इस बात को देखा था जो उसका अनुग्रह हुआ, किस प्रकार से उसने अपने अनुग्रह के द्वारा हमें बचा लिया और अब हम किस प्रकार से एक निशुद्धता में, शुद्धता में, पवित्रता में आगे बढ़ते हुए बढ़ सके। दूसरे अध्याय में किस रीति से हमें लोगों के लिए प्रार्थना करनी है, जैसे आज भी प्रार्थना की गई, जो शासक है ताकि कोई ना कोई हर तरह से लोग सुसमाचार को सुन सके और उनका उद्धार हो सके और प्रभु को जान सके। तीसरे अध्याय में हमने देखा था किस प्रकार से सेवकों को जो अध्यक्ष हैं, एल्डर हैं, डीकन हैं और उनके परिवार को कैसा होना चाहिए और किस प्रकार से उनका जीवन, उनका स्वभाव, उनका कार्य होना चाहिए, उसको देखा था। और तब उसके बाद पिछले इतवार को हमने देखा था किस प्रकार से वो तीमोथियुस को कुछ निर्देश दे रहा है किस प्रकार से एक सेवक होने के नाते उसको कैसे परिश्रम करना है, कैसा उसका जीवन होना है, किस रीति से उसको सेवा में आगे बढ़ना है और किस प्रकार से सेवाओं के लिए चुनाव करना है, ये सारी चीजें हमने पिछली बार देखी थी। आज भी उसी क्रम में बढ़ते हुए पांचवें अध्याय में भी हम इसी तरह को कुछ पाते हैं और आज जो पांचवें अध्याय में जो 25 पद हैं उसका मुख्य जो थीम है या विषय है वो ये होता है कि कलीसिया में धार्मिकता का जीवन, कलीसिया में धार्मिकता का जीवन, गॉडली लाइफ इन द चर्च, कलीसिया में धार्मिकता का जीवन। वो धार्मिकता का जीवन सेवकों के लिए जो उसमें कार्य कर रहे हैं, जो उस पर जिम्मेदारी को उठा रहे हैं और वो धार्मिकता का जीवन न केवल सेवकों के लिए लेकिन उसके साथ साथ जो सदस्य हैं, लोग हैं, उनके लिए, ये हमें देखना है। सो बहुत ही जरूरी है हम इन वचनों को समझे सीखें। सो 25 पद हैं, 25 पद में दो मुख्य भाग हैं। पहले भाग में जो पहले से 16 पद हैं कि कलीसिया में जो हमारी बहनें हैं, चाहे वो विधवा हों, चाहे वो युवा बहनें हों, जो युवा विधवा हैं या विधवा उम्रदार हैं, उन बहनों को किस प्रकार से उनकी देखभाल होनी चाहिए कलीसिया में और किस प्रकार से उनका जीवन या उनका स्वभाव भी, उनका जीवन भी होना चाहिए। फिर उसके बाद 17 पद से लेकर 25 पद तक फिर वो आकर कहता है किस रीति से कलीसिया में सेवकों के साथ व्यवहार करना है, सेवक कैसे होने चाहिए, उनका किस प्रकार से उनको चुनना चाहिए, किस प्रकार से उनके साथ व्यवहार करना चाहिए, ये सारी चीजों को हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। तो पहले विधवाओं के बारे में है, फिर सेवकों के बारे में, ये दो मुख्य भाग हैं जो हम इस पहले तीमोथियुस के पांचवें अध्याय में देख सकते हैं, पहले से 16 पद तक, 17 से लेकर 25 पद तक, लेकिन उनके बीच में भी हम इन खंडों में आगे बढ़ते और देखते चले जाएंगे। सो जब हम आगे बढ़ते हैं तो पहले दूसरे पद में अब इस बात को वो कह रहा है, किसी वृद्ध को कठोरता से न डांट वरन उसे पिता जानकर समझा दे, युवकों को भाई, वृद्ध महिलाओं को माता और युवतियों को बहन जानकर पूर्ण पवित्रता से समझा। किस प्रकार से एक अगुआ है, अगुओं के किस प्रकार से व्यवहार करना है, अगो किस प्रकार से देखना है, कैसे करना है और किस रीति से यहां पर कुछ ट्रेनिंग देना है। वो वृद्ध की बात कर रहा है, वो महिलाओं की बात कर रहा है, वो युवकों की बात कर रहा है, वृद्ध की बात कर रहा है, युवक की बात कर रहा है, महिलाओं की बात कर रहा है और युवतियों मतलब यंग वुमेन की बात कर रहा है। वो कह रहा है जो वृद्ध है तुम्हारे बीच में उनको तुम्हें पिता के समान समझना है, पिता के समान समझना है और पिता के समान उनका सम्मान करना है। जो तुम्हारे बीच में जवान है, युवा है, उनको भाई के समान समझना है। प्रभु का धन्यवाद हो, कलीसिया ही है जहां पर इन संबंधों का पर स्थान दिया जाता है और शिक्षा दी जाती है और बताया जाता है। यही है जब विभिन्न पुरुष भूमि से आते हैं, जब एक प्रभु पर के पास आते हैं, एक प्रभु को स्वीकार करते हैं, एक परिवार में शामिल होते हैं तो वहां एक परिवार बनता है। यही कारण है कि हम प्रभु भोज में एक साथ शामिल होते हैं। सो जो जवान हैं उनको किस प्रकार से हमें भाई के समान समझना है, वृद्ध महिलाएं हैं उनको माताओं के समान समझना है, उनको माता, युवतियों को बहन जानकर पूर्ण पवित्रता समझाना है। अब ये इससे क्या होगा, पहली बात जब हमारे दिमाग में, हमारे मस्तिष्क में, हमारे सोच में ये संबंध का आएगा, वृद्ध को हमें पिता समझना है, वृद्ध महिला को हमें माता समझना है, युवा भाई को हमें भाई समझना है, युवक को भाई समझना है, युवा महिला को हमें युवती को बहन समझना है। जब ये चीजें हमारे दिमाग में आएंगी तो हमें ये संसारिकता से, शारीरिकता से और पाप से बचा कर रखेंगी। हमारी सोच, हमारे विचार, ये बहुत जरूरी है। हम किसी के साथ किस प्रकार से कैसे व्यवहार रखते हैं, कैसे व्यवहार रखते हैं, और वो ना केवल हमारे सोच पर प्रभाव डालेगा लेकिन हमारी दृष्टि भी प्रभाव डालेगा। और इसलिए ये दो पद में इस बात को कह रहा है, ये दो पद में बहुत चीजें छिपी हुई हैं। इससे पहले कि वो आगे और व्याख्या करे और आगे एक्सप्लेन करे, इन दो पद में ये चार बातों को ला रहा है। वृद्ध को ला रहा है, चाहे वृद्ध बहन हो चाहे वृद्ध भाई हो, युवतियों को ला रहा है चाहे वृद्ध युवती हो, महिला हो चाहे युवती हो, यंग हो, तुझे कैसे व्यवहार करना है, कैसे सोचना है। और शब्द कह रहा है, वो कह रहा है पवित्रता के साथ। संबंध की स्थापना पवित्रता के साथ होती है, ये एक महत्वपूर्ण बात है। जब पवित्रता की बात आती है तो वहां स्वार्थ नहीं दिखाई देता, जब पवित्रता की बात आती है तो वहां छल नहीं दिखाई देता, जब पवित्रता की बात दिखाई देती है वहां कपट या धोखा नहीं दिखाई देता। तब केवल हम अपने 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 हित की नहीं सोचते, हमारे सोच में, हमारे व्यवहार में, हमारे कार्य में, हमारे कदमों में फर्क हो जाता है। और इसलिए वो पवित्रता की बात कर रहा है। और बाइबल में पवित्रता शब्द जो है लगभग 90 बार आया है, लगभग 90 बार आया, अर्थात परमेश्वर के वचन में पवित्रता का इतना अधिक महत्वपूर्ण महत्व दिया गया है। तो जब हम इस बात को देखते हैं तब हम आगे बढ़ते हैं, तब वो तीन पद से लेकर के आगे बढ़कर अब कुछ श्रेणी की बात कर रहा है। पूर्ण पवित्रता साथ, जैसे मैंने कहा, जब पवित्रता की बात होती है हमारे व्यवहार में, हमारे बोलचाल में, हमारे स्वभाव में, हमारी भाषा में, हमारे शब्द में, हम क्यों यहां पर एक दूसरे को सीधा नाम लेकर के, खड़ा नाम लेकर के हमारे भाई लोग रहते हैं, ये एक दूसरे को हम सिखाते हैं कि आपको एक दूसरे को भाई करके, ब्रदर करके संबोधित करना है। हमारी भाषा सलोनी होनी है, हमारा संबोधन अच्छा होना है। यहां तक कि हम उम्र में हो जाते हैं तब भी उसके बाद भी हम प्रतिशील रहते हैं कि सीधे सीधे किसी का नाम ना लें। ये सभ्यता की बात आती है, ये परमेश्वर का वचन सिखाता है हमें। और यहां पर सो जब हम इन बात को बात करते हैं तो ये चीज है भक्ति, जो परिवार के प्रति ये जो है वो एक भक्तिपूर्ण रवैया शुरू हो जाता है। इसकी कहते हैं गॉडली लाइफ, इसी कहते हैं गॉडली लाइफ। तब आगे वो कह रहा है विधवाओं का आदर कर जो वास्तव में विधवा है, विधवाओं का आदर कर जो वास्तव में विधवा है। और उसको वो एक्सप्लेन करता है वास्तव में कौन सी विधवा है। बहुत सारी विधवा है, कलीसिया में भी हमारी कुछ बहनें हैं, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु ने उनको रखा है हमारे बीच में। हम शुरू से कुछ ना कुछ, जब बाराबंकी में थे वहां बहुत सारी बहनें थी, हम उनके बारे में बहुत दूसरी तरह सोचते थे। लेकिन हाँ, परमेश्वर सिखाता है वचन में कि उनका भी स्वभाव चरित्र कैसा होना चाहिए, जिसको हम आगे चल के देखेंगे। ये भी चीज है, यदि किसी विधवा के बेटे बेटियां या नाती पोते हो तो उन्हें चाहिए कि सर्वप्रथम अपने परिवार के प्रति भक्ति का व्यवहार करें। अगर ऐसा परिवार है जहां आपके पिता का देहांत हो गया लेकिन आपकी माता है, आपको किस प्रकार से उसके साथ व्यवहार करना है। हो सकता है परिवार में ऐसा हो, विश्वव्यापी कलीसिया की शिक्षा है और बहुत से परिवारों में होता है, जहां पर हमारे पास हमारी बहन है जिसके पति का देहांत हो गया हो, मुझे उसके साथ कैसा व्यवहार करना है, कैसा सोचना है, कह रहा है यहां पर। और इसलिए वो कह रहा है भक्ति का व्यवहार करें, अपने और अपने माता पिता को उनके उपकार का बदला दें, क्योंकि इससे परमेश्वर प्रसन्न होता है, क्योंकि इससे परमेश्वर प्रसन्न होता है। हो सकता है माता पिता शायद कमजोर रहे हों, निर्धन रहे हों, शायद बहुत सारी चीजों में हमारी इच्छाओं को पूरा ना कर पाए हों, बहुत कुछ हो, लेकिन माता पिता ने हमारी परवरिश करने के लिए संघर्ष किया है। माता पिता ने, जब आप बीमार थे, शायद आप 3 साल 4 साल 5 साल के थे और बहुत बुरी तरह से बीमार हो रहे थे, कौन आपको गोद में लेके डॉक्टर के पास दौड़ा था, किसने आपके तन ढके थे, किसने आपको भोजन खिलाया था, किसने आपकी पढ़ाई की व्यवस्था करी थी। शायद हो सकता है आपकी अपेक्षा के अनुसार ना कर पाओ, लेकिन फिर भी, और ये माता पिता की भी जिम्मेदारी है। तो यहां पर कहता है कि और बच्चों को बहुत अधिक अपने माता पिता के प्रति आदर में होना है। हम माता पिता को ईश्वर नहीं बनाते, इस बात को ध्यान में रखिए। लेकिन माता पिता का सम्मान करते हैं, माता पिता की चिंता करते हैं, माता पिता की सुधि लेते हैं, माता पिता की जो जिम्मेदारी हमारी बहुत एक स्थल नहीं है। बाइबल में कभी एक पद को लेकर हम पूरी चीजों को नहीं, किसी ने कहा मुझसे एक बार कि किसी कलीसिया में एक बहन ने कहा कि जो ये पद है कि जो अपने माता पिता को मुझसे अधिक जाने वो मेरे योग नहीं, इसको लोग तोड़ मड़ोड़ के रख देते हैं और ऐसी शिक्षा देते हैं माता पिता की तुम्हें कोई जरूरत नहीं। गलत है, बाइबल ऐसा नहीं सिखाती। हमें समझना क्या स्थिति है वहां पर, प्रभु क्या शिक्षा दे रहा है। हां, अगर मेरे माता पिता मेरे विश्वास में रो रहा है, प्रभु के जीवन में रोना है, मेरे सही निर्णय में जो प्रभु के साथ मेरा जीवन का निर्णय उसमें रोना है, तो मुझे समझना है, देखना है। लेकिन जहां तक उनकी बात है, मुझे उनका सम्मान करना है और उनकी चिंता करनी है। और इससे लिखा हुआ है, इससे प्रभु प्रसन्न होता है। मैं बार बार जब ये बात आती है तो मैं इस बात को शेयर करता हूं, क्योंकि आज बहुत सारे माता पिता का ये दुख है, ये पीड़ा है कि उनके बच्चे आज संसार में हम देख रहे हैं, संसार में देख रहे हैं, क्यों सरकार नियम बना रही है, बूढ़े माता पिता को कहीं कहीं छोड़ देते हैं, ये देखना है, सोचना है, और इसलिए परमेश्वर के संग। लेकिन यहां पर जो बात कर रहा है, किस प्रकार से वो बात कर रहा है, खैर आगे चलते हैं। वो जो वास्तव में विधवा है, अब यहां पर एक शब्द आ रहा है, जो वास्तव में विधवा है, वो वास्तव में और अकेली है, केवल परमेश्वर पर आश्रित। अब यहां पर ये विधवा के बारे में 5 पद से लेकर के लगभग 10 पद तक मैं सोचता 10-12 बातें हैं जो एक ऐसी विधवा जो भक्ति का जीवन व्यतीत करती है, जो धार्मिकता का जीवन व्यतीत करती है, उसकी क्या पहचान है, उसका जीवन कैसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। उसके जीवन में पहली बात यह होनी चाहिए कि वो परमेश्वर पर आशा रखने वाले होने चाहिए, रात दिन निवेदन और प्रार्थना करने वाले होने चाहिए। अब रात दिन निवेदन और प्रार्थना करने मतलब ये नहीं कि वो केवल प्रार्थना ही करते और काम कुछ और काम नहीं करते। कई बार हम इसको बहाना बनाते हैं, बस और कुछ नहीं करना, मुझे प्रार्थना करना, वचन कहता है प्रार्थना करना। हम बेतल में रहते थे और बेतल में एक भाई, हम लोग 4-5 भाई रहते थे, और अक्सर एक भाई जब भी प्रार्थना का समय, काम का समय आता था, हमें हॉल तैयार करना पड़ता था और कुछ कुछ करना पड़ता था, जब भी काम का समय आना पड़ता होता था, वो बाइबल लेकर के घुटने के बल कोने में चला जाता था प्रार्थना करने के लिए। हम कहते हैं भैया आके कुछ मदद करो, काम करो, तो मैं प्रार्थना कर रहा हूं। मुझे एक दिन थोड़ा सा मेरा दिमाग खराब हो गया, प्रार्थना कर रहा था, मैंने गया हाथ पकड़ा, मैंने चलो आत्मा में प्रार्थना करो, काम करो, प्रार्थना करते रहो। प्रार्थना बहाना नहीं है, प्रार्थना को बहाना ना बनाइए, लेकिन उसको समझना है। हमें प्रार्थना का जीवन चलते बैठते उठते बैठते रखना है, लेकिन यह करना ना कल प्रार्थना करने वाली हो। लेकिन एक और आगे चल के कहता है, वो आगे कहता है परंतु वो भोग विलास में पड़ गई। अब यहां पर कुछ नकारात्मक बातें हैं और कुछ सकारात्मक बात, कुछ होना चाहिए कुछ नहीं होना चाहिए। जो नहीं होना चाहिए वो 6 और 7 पद में वो वर्णन कर रहा है, क्या नहीं होना चाहिए। भोग विलास में नहीं पड़ी होनी चाहिए, पड़ गई हो जीवित होते हुए ऐसे कि भोग विलास में मरकर जी तो नहीं है लेकिन उनका जीवन मृतक मृतक के समान है। इन बातों को आश्रय दिया कर और उसमें कोई उन पर लांछन ना गए। परंतु यदि कोई अपने लोगों की विशेषकर अपने परिवार की देखभाल नहीं करता तो अपने विश्वास से मुकर गया और एक अविश्वासी से भी निकृष्ट है। एक अविश्वासी से भी क्या है, निकृष्ट है। उसी विधवा का नाम सूची में सम्मिलित करना। अब आपको मालूम है कलीसिया में सबसे पहली समस्या क्या हुई थी, प्रेत काम उसके दूसरे अध्याय में कलीसिया की स्थापना हुई। तीसरे अध्याय में हम देखते हैं किस प्रकार से प्रभु के दया से परमेश्वर पतरस को और यौहन्ना का इस्तेमाल किया और एक लंगड़ा चंगा हुआ और चंगड़ा होकर के प्रभु यीशु मसीह का नाम फैलते हैं। और 4 अध्याय में सुसमाचार प्रचार हो रहा था, 5 अध्याय में विरोध हुआ, प्रचार हुआ, सब कुछ है, लेकिन 6 अध्याय में कलीसिया बढ़ रही है यीशु के। अब 6 अध्याय में वहां पर कुछ हो गया, क्या गड़बड़ हो गया, विधवाओं की सुधि नहीं ली जाती। पहली समस्या कलीसिया में जो सबसे पहली समस्या थी इंटरनल, अंदर की। बाहर से तो सुसमाचार प्रचार का विरोध हो रहा था, उनको पकड़ के बंदीगृह में डाला जाता, लेकिन जो अंदर से थी वो ये थी कि वहां पर जो लोग थे, वहां बहनें जो थी उनके लिए एक अलग स्थान बनाया जाता था, उस समय आरंभ से हो गया था, उनकी सुधि नहीं ली जा रही, वहां समस्या। और इसीलिए पौलुस उन सारी बातों को एक व्यवहारिक रीति से शिक्षा देता है। जब हम बातों को देखते हैं तो हम देखते हैं कि ये किस रीति परमेश्वर सिखाना चाहता है। वो कह रहा है कौन सी महिला, कौन सी विधवा, उसका नाम लिख ले। पहली बात, जो 60 वर्ष से कम ना हो, सीनियर सिटीजन। क्यों 60 वर्ष से कम ना हो, क्यों 60 वर्ष से कम ना हो, क्यों, इसको समझना है। 60 वर्ष से कम ना आजकल आजकल मतलब वो अपनी जीविका को खुद अर्न कर सकती है, वो परिश्रम कर सकती है, काम धंधा कर सकती है, कुछ ना कुछ सकती है। वो नहीं कि बस कि मैं विधवा में दूसरे पर निर्भर रहूंगी, ये नहीं है। लेकिन उसको भी कुछ ना कुछ करना है, उसको भी कुछ ना कुछ करना है। हाँ, उसका परिस्थिति अलग हो, मजबूरी हो, कुछ और चीज हो, लेकिन फिर भी इस बात को पौलुस समझा रहा है कि इस रीति से ऐसे करना है। लेकिन उसके साथ वो कहता है एक ही पत्नी की पति रही हो, उसका पास्ट जो जीवन ना उसके जीव में कोई दूसरा उंगली दिखाने वाला ना हो, क्योंकि हम देख रहे थे, हम पहले मैं बता रहा था कि परिस्थिति क्या थी उस समय रोमी शासन में। ये स्वतंत्रता थी कि एक आदमी को छोड़कर दूसरे पास जा सकते हो, दूसरे को छोड़कर तीसरे पास जा सकते हो, आदमी कई औरतें रख सकते थे, बारी बारी औरतें आदमी को रख सकती थी, और ये बहुत ही गड़बड़ बना हुआ था। और उसको देखकर पौलुस बार 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 उस शिक्षक को दे रहा है, इसलिए पवित्रता की बात कर रहा है, और वह कह रहा है कि ऐसा ध्यान रखना। उसने इसको छोड़ दिया, उसको छोड़ दिया, उसको छोड़ दिया, और तब जब नहीं नहीं ऐसा नहीं, और तब कह रहा है भले काम करने में सुनामी हो, उसका नाम अच्छा रहा, लड़ाई झगड़े करने वाले नहीं, पूरे मोहल्ले में हल्ला मचा दिया, अरे भैया इससे सावधान, बुढ़िया बड़ी खतरनाक है, ऐसा नहीं होना, ऐसा नहीं होना, सावधान है, ये चीज है। वो कह रहा है और जिसने कहा भले काम करने में सुनामी रही हो, बहुत सारे बाइबल में दिया हुआ है, लोगों को हम देखते हैं जो डॉर्कस के बारे में है, किस रीति भले काम करती थी डॉर्कस, भले काम करती थी, और भी बहुत सारी बहनें जो हम प्रेत काम में देखते हैं, जिसने बच्चों का पालन पोषण किया हो, बच्चों का पालन पोषण समझदारी के साथ, वचन के साथ, सही रीति से। कई बार पालन पोषण बाइबल जो सिखाती है केवल रोटी खिलाने से मतलब नहीं है, केवल कपड़े पहनाने से मतलब नहीं है, लेकिन पालन पोषण का मतलब यह है कि जो महिला अपने बच्चों को परमेश्वर के भय में, परमेश्वर की शिक्षा में, परमेश्वर के ज्ञान में, परमेश्वर के तरीके से आगे उनको उनका पालन करते हैं। केवल रोटी कपड़ा मकान की बात नहीं हो रहा, लेकिन एक आत्मिक संचालन, आत्मिक जीवन को बनाना, वो ये सिखाना चाह रहा है कि यह है। और तब उसके बाद कहते हैं अतिथि सेवा की हो, पिछली बार भी हमने देखा था पवित्र लोगों के चरण धोए, अपवित्र लोगों का चरण धोना का मतलब जो भी आ रहा है उसके पांव धो रहा है, यह मतलब नहीं है। सच है प्रभु यीशु मसीह ने एक आदर्श रखा था, एक आदर्श रखा था, प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना उसके 13 अध्याय में अपने शिष्यों के पांव धोए थे, और आज कई लोग इस बात को देख करके धोते हैं, चरण धोते हैं। आपको पिछले दिन मालूम है हमारे देश के प्रधानमंत्री ने भी कुछ लोगों के चरण धोए थे, वो कहानी को मैं ज्यादा विस्तार में नहीं रहूंगा, लेकिन मतलब उद्देश्य क्या है वो चरण धोना, वो लिटरली पांव धोना मतलब नहीं है, वो उसने अपने आप को दीनता के साथ, नम्रता के साथ उसने जीवन व्यतीत किया, झुक कर जीवन, प्रभु यीशु मसीह ने अपनी दीनता को दर्शाया था, प्रभु यीशु मसीह ने अपनी नम्रता को दिखाया था, प्रभु यीशु मसीह हमें छोटा बना था, शिष्य से भी उसने अपने आप को छोटा किया था, और ये है। और वहां पर यूहन्ना 13 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने शिक्षा दी थी, और वो कह रहा है कि ये क्या हो, पवित्र लोग चंद हो, दीन दुखियों की सहायता की हो, और अपने आप को प्रत्येक भले काम में लगाया हो। अब मैंने कहा ना करीब 10-11 चीजें हैं जो इन पदों में उसकी सकारात्मक चरित्र, व्यवहार, स्वभाव। अब यही चीज पुरुषों पे भी लागू होती है। अब मत सोचिए कि पुरुषों के लिए पौलुस नहीं कह रहा है, तुम तो उसके केवल बहनों, क्योंकि वहां बहनों के साथ कुछ समस्या आ रही थी, इसलिए उन बातों को ध्यान में रखकर लिखता है, वो लिखता है ध्यान में। पर यह चीज पुरुषों पर भी लागू होती है, भाइयों पर भी लागू होती है, मेरे और आपका जीवन भी इसी प्रकार का जीवन होना है। यही चीज परमेश्वर चाहता है ना, कि हमारे अंदर वो चीज परमेश्वर का भय मानना है, किस पवित्रता से रहना है, अतिथि सत्कार करना है, बच्चों की सेवा करनी है। इसीलिए थिस्सलुनीके में कहता है पौलुस, पौलुस अपने आदर्श के बारे में कहता है मैंने एक अच्छी माँ के समान, मैंने एक अच्छे पिता के समान तुम्हारे बीच में तुम्हारी सेवा की है। वो अपने आप को पिता के स्थान में रखता है, वो अपने आप को माता के स्थान में रखता है, मैंने तुम्हारा पालन पोषण किया है, मैंने तुम्हारी देखभाल की है। सो दोनों की जिम्मेदारी है। यहां पर जरूर एक विशेष रीति से बहनों को संबोधित कर रहा है, परंतु आज आप कहेंगे ओह ये तो बहनों के लिए था, मेरे लिए नहीं था। नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं। परमेश्वर का वचन समान है, वो मेरे जीवन के लिए भी वैसे ही है जैसे बहनों के लिए। अब कल जाके घर में कहेंगे आज सुना था तुमने, आज तुम्हारे बारे में बताया था अंकल ने, है ना, सुना था तुमने, अपने आप को ऐसा रखो। भैया नहीं ऐसा मत कहिएगा, आप ये सोचिए क्या मेरे अंदर ये बात चीजें पाई जाती हैं, क्या मेरे अंदर ये स्वभाव पाया जाता है, क्या मैं इस तरीके से जीवन को व्यतीत करूं। जब आप ऐसा सोचेंगे और आपकी पत्नी ऐसा सोचेंगे, तब दोनों मिलकर आगे बढ़ेंगे। हम एक दूसरे को नीचा गिरने के लिए नहीं है, नीचा दिखाने के लिए नहीं, लेकिन एक दूसरे साथ खड़े होकर आगे बढ़ने के लिए है। इस चीज को मैं समझना है। तो कभी भी परमेश्वर के वचन को यहां से जाकर के एक दूसरे पर मत थोपिए, आज तो तुम्हारे बारे में क्या था, अच्छा आज कल लोग तुम्हारे बारे में आ गए। नहीं 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 तुम्हारे और मेरे बारे में नहीं, हम सबके बारे में। परमेश्वर हम सबसे बात करता है, हम सबको शिक्षा देता है समान। जब मैं इस बात को देखता हूं तो मैं देखता हूं क्या ही मेरे स्वभाव में, मैं अपने घर में, अपने परिवार में, अपने लोगों के साथ क्या मैं करने के लिए तैयार रहता हूं, या मुझे और अधिक करना है। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु मुझे और अधिक जो आयु दी है और अधिक करने के लिए मेरी सहायता कीजिए। मैं इस तरह से प्रार्थना करता हूं, मैं जब वचन तैयार करता हूं मैं अपने लिए प्रार्थना करता हूं, मैं गंभीरता से उसको लेता हूं, क्योंकि मुझे एक दिन परमेश्वर सामने खड़े होकर हिसाब देना पड़ेगा। तूने वचन प्रचार किया लेकिन क्या तेरे जीवन में पाया गया? मैं दोषी नहीं ठहरना चाहता इसलिए, और आपसे भी प्रार्थना करता हूं कि आप मेरे लिए प्रार्थना करें कि प्रभु ये चीजें मेरे जीवन में और आए ताकि हम और अधिक उस रीति सेवा कर सके। ये है। और यहां पर वो कहता है, तब उसके बाद जवान बहनों के बारे में बात कर रहा है, 11 पद से लेकर के वो आगे चल करके जवान 17 पद तक जवान बहनों के बारे में कुछ सकारात्मक है कुछ है। अब ध्यान दीजिएगा, जवान बहनों की सूची में सम्मिलित न करना, क्योंकि जब वे देह की इच्छाओं को मसीह से बढ़कर महत्व देती हैं तो विवाह करना अच्छित है। अगर मान लीजिए कोई युवा बहन हमारे बीच में, अगर उसके पति का देहांत हो गया, वो स्वतंत्र वो विवाह कर सकती है, विवाह कर सकती है, बाइबल मना नहीं करती। लेकिन अगर परमेश्वर उसको ये इच्छा रखता है कि वो ऐसी जीवन व्यतीत करे तो भी पाप नहीं है, लेकिन वो गुण जो बाइबल बताती है, परमेश्वर वचन बताता है, वो उसके अंदर विद्वान होना चाहिए, उसके अंदर रहना चाहिए। और वो कह रहा है क्या है कि वो इच्छाएं जो देह की इच्छाएं हैं को मसीह से बढ़कर महत्व देती है। अगर उसके लिए प्रभु बड़ा है तो ठीक है वो आगे बढ़ सकती है, मसीह बड़ा है, मसीह में होकर सब कुछ को त्याग करने तैयार है, ठीक है प्रभु का धन्यवाद, प्रभु उसको अनुग्रह करे, प्रभु उसको शक्ति दे, प्रभु उसको सामर्थ्य दे, प्रभु उसको इससे बनाए और वो आगे बढ़ सकती है। लेकिन अगर उसके अंदर ये नहीं है, अगर उसके अंदर वो शक्ति नहीं है, अगर उसके अंदर वो सामर्थ्य नहीं है, अगर उसके अंदर वो भावना सावा नहीं है, तो अच्छा है कि वो विवाह कर ले ताकि दूसरों को उंगली उठाने का अवसर ना मिले। कह रहा है अब कहता है इस प्रकार वे दोष चाहते क्योंकि उन्होंने अपनी पहले विश्वास प्रतिज्ञा का प्रतिज्ञा कर दी। क्या मतलब विश्वास प्रतिज्ञा? जब एक विवाह बंध में आते हैं बांधते जाते हैं तब दोनों आते हैं कलीसिया में और दोनों एक दूसरे साथ प्रतिज्ञा बांधते हैं, स्त्री पुरुष के साथ, पुरुष स्त्री के साथ। अगर उसका पति की मृत्यु हो गई और अगर वो स्त्री ठीक है अकेली है, वो नहीं रहती, अगर वो व्यर्थ का जीवन व्यतीत करती है, गड़बड़ जीवन व्यतीत करी है, आज उसके साथ कल उसके साथ, तो पाप है। इसका मतलब वो उसके साथ जो प्रतिज्ञा बांधी थी उससे उसका वो तिरस्कार कर रही है। मलाकी उसके चार अध्याय में, मलाकी दो अध्याय में उसका वर्णन है जो प्रतिज्ञा वाचा के बारे में है, और इसीलिए वहां पर लिखा आगे चल के कि तलाक करना पाप है, तलाक से परमेश्वर प्रश्न होता, मलाकी 2015 पद से आगे है। तब आगे हम पढ़ते हैं, हम देखते हैं तब क्या कह रहा है, लेकिन इसके साथ साथ 13 पद ध्यान दीजिएगा, इसके साथ वो घर घर घूमकर आलसी बनना और न केवल आलसी रहना परंतु गपशप करना और दूसरों के कामों में व्यर्थ हाथ डालना सीखती हैं और ऐसी बातें कहती हैं जो कहने के योग्य नहीं। अगर इस प्रकार की महिलाओं का स्वभाव है घर घर जाकर के, पहली चीज आलसी, बाइबल में आलसी की शिक्षाएं बहुत है, आलसी की शिक्षा बहुत है जीवन में। आइए एक दो पद को मैं ले जाऊंगा, नीति वचन में आ जाइए, अच्छा है उसको पढ़ लें, नीति वचन उसका 24 अध्याय। मैं अक्सर लोगों से बात करता हूं कि टाइम मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट बहुत ही जरूरी है। नीति वचन उसका 24 अध्याय प्रोवर्ब्स 24:30 पढ़ रहा हूं मैं आलसी मनुष्य के खेत अर्थात निर्बुद्ध मनुष्य की दाग की बारी के पास से होकर निकला तो देखो वो कटीली झाड़ियों से भरी पड़ी है। मैं आलसी मनुष्य के खेत अर्थात निर्बुद्ध मनुष्य, आलसी मनुष्य को क्या कहा गया है? निर्बुद्ध मनुष्य। ये पुरुष पर भी लागू है, स्त्री पर भी लागू है। स्त्री आलस के कारण ना घर की देखभाल कर पाती है, ना बच्चों की देखभाल कर पाती है, ना संवार पाती है, ना कुछ कर पाती है, केवल इधर उधर में समय व्यतीत करती है, गपशप मारती है, इधर से उधर, उधर से घूमती है। ये है, पुरुष भी ऐसे ही करता है, पड़ा रहता है, कुछ नहीं करता है। तो कहता है निर्बुद्ध मनुष्य की दाग के बारे से के पास से निकला और तो देखो वो कटीली झाड़ियों से भरी पड़ी थी। अब क्या हो गया वहां पर? क्या हो गया वहां पर? सारे झाड़ जंगार हो गए और क्या कह रहे, बिच्छू पौधों के से ढक गई थी। बिच्छू पौधे जिसको छो तो क्या लगता है? बिच्छू पौधे को छू लेगा तो क्या लगेगा? मजा आएगा, खूब छूए, पूरे शरीर में प्रतिक्रिया हो जाएगी, खुजली हो, खुजाते जाएंगे, खाल उतर जाएगी आपकी। अच्छी चीज नहीं है, हानि का, उससे आदमी लोग बचते हैं अपने आप को, है ना। और उसकी पत्थर की दीवार टूटकर गिर पड़ी, पत्थर की दीवार जितनी भी मजबूती हो, जितनी भी दृढ़ता आपके परिवार की, वो सब टूट जाएगी। क्या होगा? धीरे धीरे बच्चे देखते हैं, पत्नी देखती है, पड़ोसी देखते हैं, आसपास देखते हैं, पति देखता है। क्या होता है? जो मजबूती बल से परिवार बनना चाहिए, जो घर घर खड़ा होना चाहिए, जिस घर के द्वारा जिस पर शैतान आक्रमण न करने पाए, संसार के लोग आक्रमण न करने पाए, ठट्टा ना पड़ाए, वो क्या होती है? वो गिर जाती है, ढह जाती है। आपको मालूम है कोई दीवार खड़ी रही, उस पर अगर कोई काम ना हो, एक ईंटा गिरता है, उसके बाद थोड़ी देर बाद जाइए, थोड़ा सा और प्लास्टर गिरा दिखाई देगा, फिर थोड़ी देर बाद देखे, फिर एक ईंट और गिराई देगी, और फिर पता चला धीरे धीरे एक धक्का मारेंगे, एक एक ईंट करके सब गिर जाएंगे। समझने की कोशिश करिए, परमेश्वर का वचन गंभीर है। एक और स्थल देख लीजिए मेहरबान से, थोड़ा सा आगे बढ़ लूंगा पहले इसको। जब मैंने ये देखा तो इस पर सोच विचार किया, हाँ मैंने देखकर शिक्षा प्राप्त की। थोड़ा और नील, एक और झपकी, हाथ पर हाथ रखकर थोड़ा और लेटे रहना, तब तेरी दरिद्रता लुटेरे के समान और तेरी घटी अंधेर बंद मनुष्य के समान आ पड़ेगी। अरे अभी तो क्या हुआ, अभी तो 6 बजे, चलो 10 मिनट और सो जाए, फिर अरे अभी तो 6:30 बजे, फिर थोड़ा और क्या, तो क्या कह रहा है, तब थोड़ा नहीं, एक और झपकी, हाथ पर हाथ रखकर थोड़ा लेटे रहना, तब तेरी दरिद्रता क्या होगी, ऐसा हो जाएगी। एक और पद देख लीजिए, नीति वचन उसका 6 अध्याय, नीति वचन उसका 6 अध्याय, 9 पद से पढ़ रहा हूं मैं। हे आलसी, तू कब तक लेटा रहेगा, तू अपनी नींद से कब जागेगा, और थोड़ी सी नींद, एक और झपकी, हाथ पर हाथ रख के थोड़ा और लेटे रहना, तब तेरी दरिद्रता राह के लुटेरे के समान शस्त्रधारी की भांति तुझ पर आ पड़ेगी। क्या पड़ेगी? तो एक आलसी व्यक्ति अपने ऊपर गरीबी स्वयं लाता है, दूसरे के कारण नहीं आता। नीति वचन उसका 6 अध्याय 30 पद से। तो एक गरीब, एक आलसी व्यक्ति, मैं अक्सर बोलता हूं आलसी, घमंडी, लालची, ये हमेशा गरीब रहते हैं। ध्यान दीजिए, अब गरीबी का मतलब नहीं हमारे पास बहुत बड़ा महा, अमीर का मतलब नहीं बहुत बड़ा महा महल परमेश्वर देता है, नहीं, हम रोते नहीं है, हमें दैनिक आवश्यकता हमारी पूरी परमेश्वर करता है, है ना। कोई बात हम इतना हमें दे देता है कि हमारे पास 5 रुपए हमारे पास भी है, तो उसमें से हम एक रुपए से दूसरे की सहायता कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे अंदर परिश्रम करने की इच्छा नहीं है, अगर हम आलसी हैं, तो ये सारी चीज हमारे ऊपर आ जाएगी। एक व्यक्ति को सोच खोजना है, मेहनत करनी पड़ती है, ढूंढना पड़ता है ना, कि कैसे कैसे वो अपने जीवन और अपने परिवार को संभाले, और इसलिए बहुत जरूरी। सो मेरे बात से, ये एक आलस का पाप बहुत भयंकर पाप है, बहुत बड़ा पाप है। हमारा प्रभु यीशु मसीह आलसी नहीं था, प्रभु यीशु मसीह आलसी नहीं था। और क्यों आलसी नहीं था, एक और पद में आपके सामने रखूंगा। प्रभु यीशु मसीह की दिनचर्या को आप देखिए, किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह, लूका 21 अध्याय, किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह का मेहनत करने का उसका तरीका क्या था। अब यह मतलब नहीं कि आप इतना काम कर लेंगे कि अपने परिवार को भी समय ना दें। एक दिन परिवार के बारे में मुझे बात करनी है बाद में। 37 पद, यीशु मसीह के बारे में क्या लिखा हुआ है, दिन को वो मंदिर में जाकर उपदेश दिया करता था, परंतु संध्या के समय वो बाहर निकलकर सारी रात उस पर्वत पर जो जैतून पर कहलाता बिताता था, और लोग सुबह तड़के उठकर उसके पास मंदिर में उसकी सुनने के लिए आया करते थे। दिन, संध्या, रात, सुबह, चारों पहर का उसका टाइम टेबल बना हुआ है। क्या हम अपना टाइम टेबल मैनेज करते हैं? कल मैं किसी से बोल रहा था, मैंने कहा टाइम मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट ये हमारे जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहां पर इसी यही चीज पॉलुस सिखाना चाह रहा है, इस चीज को। और वो कह रहा है कि अगर ये आलसी है, वो कहता है ना केवल आलसी है रहना, परंतु गपशप मारना, इधर गई तो उससे गप मार रही, उधर गई तो उससे गप मार रही, और दूसरों के काम में व्यर्थता डालती है, ना खुद हम करेंगे ना दूसरों करने देंगे। अरे क्या कर रही है, एक बहन बैठी मेहनत कर रही है, सिलाई कर रही है, अचार बनाई, क्या तू अचार बनी बहन साहब, थोड़ा सी बात कर ले, बेचारी का उसका मेहनत करना छोड़ दिया, उसने सोचा था कि मैं अचार बनाऊंगी बेचूंगी कुछ पैसा मिल जाएगा उसका भी समझ जाएगा, ऐसा नहीं। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम एक दूसरे के साथ संगति ना करें, लेकिन समझदारी के साथ दूसरे के कार्य में हम बाधक ना बन सके, ये ना करें व्यर्थ ना। और वो कह रहे हैं ऐसी बातें कहती है जो योग्य नहीं है। मैंने माफ कीजिएगा, जब आप मिलती हैं आप क्या बात करते हैं, भाई लोग आप मिलते हैं तो क्या बात मिलते हैं। खैर भाई लोग सूट के बारे में बात कम करते हैं, बहने साड़ी और सलवार कुर्ते के बारे में ज्यादा बात करते हैं, कोई पाप नहीं है, लेकिन समझदारी के साथ करना है, लेकिन देखना है कि हमारे किस रीति से। इसलिए मैं चाहता हूं कि जवान विधवाएं विवाह करें, संतान उत्पन्न करें, घर की देखभाल करें और शत्रु को निंदा का अवसर न दें, यह जिम्मेदारी इनकी, ये कह रहा है। इसलिए वो क्या करें, विवाह करें और विवाह के साथ साथ क्या करें, संतान उत्पन्न करें, घर की देखभाल करें और शत्रुता की वो एक परिवार की जिम्मेदारी को संभाल करके अपने समय को, अपने धन को, अपने सब चीज को सही रीति संतुलन कर सके और वो उन बच्चों को आगे चल के पालन पोषण करके उनको उस तरह तैयार कर सके जैसे परमेश्वर को वचन कहता है। और तो कह रहा है यदि किसी विश्वासी महिला के घर में विधवाएं हैं, ध्यान दीजिएगा, तो वो उनकी सहायता करे और कलीसिया पर भार न डाले। दो चीजें, हाँ, कलीसिया की जिम्मेदारी है एक विश्वासी, एक विधवा बहन की या विधवा भाई विधवा भाई की मदद करने, कलीसिया की जिम्मेदारी। अगर हमारे बीच में कोई ऐसा है और हमने प्रभु दया से हमने पिछले दिनों में बारह की बहुत लोगों करा और ये हमारे लिए आशीष की बात थी, कलीसिया ने करा कि उनको कोई देखने वाला नहीं है, उनको कोई संभालने वाला नहीं। अगर उनको कोई देखने वाला नहीं, कोई संभालने वाला नहीं है, तो कलीसिया की जिम्मेदारी है कि हम उनको अपनी वृद्ध मां समझ के, अपनी वृद्ध बहन समझ करके उनकी चिंता करें, उनके दुख में, उनकी चिंता में उनके साथ खड़े हो सकें और उनकी देखभाल कर सकें। अगर उनके संबंधी, उनके बच्चे हैं, उनके सब कुछ है, तो बच्चों की जिम्मेदारी है कि वो जिम्मेदारी को पूरा करें ताकि कलीसिया पे भार ना आने पाए। इस चीज को समझ, तो पौलुस कितने सुंदर रीति से हर चीज को बड़े क्रम से लाकर लाता है, कहां किसको कैसे करना, कहां किसको नहीं करना। और यह बहुत अच्छी बात है जब इन वचनों को हम अपने जीवन में एक रेखांकित करते हैं, पूरी रीति से बनाते हैं, फ्रेम मिलाते हैं, तो परमेश्वर हमारी सहायता करता है किस तरह से हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने कदमों को आगे बढ़ाना है। यही तो परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए तो दाऊद कहता है तेरे वचन, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक, मेरे मार्ग के लिए उजाला। यही तो कहता हूं, इसीलिए तो परमेश्वर का वचन हमें शिक्षा देता है, इसीलिए परमेश्वर वचन हमें अगुवाई करता है, इसीलिए तो प्रतिदिन हम परमेश्वर के वचन की हमें जरूरत है, उसकी जरूरत है प्रतिदिन हर क्षेत्र में परमेश्वर वचन सिखाता है, यहां तक कि हमारे व्यवसाय में, यहां तक कि हमारे कार्य में, यहां तक कि हमारी दूसरी चीजों में परमेश्वर का वचन हमें इस प्रकार से सिखाता है। अब ये पहले पद से लेकर के, मतलब तीन पद से लेकर के 16 पद तक विशेष विषय को ले रहा है, क्योंकि उस समय कल पुरुषों के बारे में भी आगे बात करेगा और करता है, लेकिन खास रीति से उस समय कलीसिया में एक समस्या थी जो विधवाओं के साथ हो रही थी, और इसलिए पौलुस वहां पर इस बात की शिक्षा देता है, भैया ये कलीसिया मसीह का परिवार है, हमें किस प्रकार से इन बहनों के साथ व्यवहार करना चाहिए, इनको देखना चाहिए, इनको संभालना चाहिए और किन बहनों को उसको हमें स्थान देना, ऐसा ना हो कि हम ठगे जा सके। सहायता करना अच्छा है, बहुत जरूरी है, लेकिन एक आलसी की, एक लालची की आप सहायता मत कीजिए। अगर वो परिश्रमी है, अगर वो परिश्रमी है, मेहनत कर रहा है, अगर ऐसा स्थिति से है, हमारा फर्ज है कि हम उसके साथ खड़े हों, क्योंकि परिश्रम कर रहा है, अपने घर की चिंता कर रहा है, अपनी देखभाल कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है। अब कभी बीमारी के साथ, किसी और परिस्थिति के साथ, किसी और चीज के साथ, कोई ऐसी उसके साथ परिस्थिति आई है, ये हमारे पड़ोस में रहता है, हमें पूरी रीति से उसकी देखभाल करनी, चिंता करनी। लेकिन कई बार लोग अपेक्षा करते हैं कि इनकी मदद की जाए, लेकिन वो खुद कुछ नहीं करना मांगते। और मेरे प्रियो, एक बात को सीख लीजिए, आपकी लोग मदद करें अच्छी बात है, लेकिन आपको यह भी देखना है कि आप भी किसी की मदद करें, आप भी किसी, प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु मुझे इस योग्य बनाइए कि मैं भी किसी की मदद कर सकूं। यह हमारे अंदर आना चाहिए, यह हमारे अंदर आना चाहिए, मुझे परमेश्वर के प्रति जिम्मेदार होना है कि मैं दूसरे की मदद करने के तत्पर हो सकूं, बिल्कुल तत्पर हूं ना, उसके नए परमेश्वर के आते मैं छोड़ूंगा, लेकिन इसके साथ साथ ये हर एक को सोचना है, हर एक को, और ये परमेश्वर तब उसके बाद 17 पद से लेकर के एकदम से विषय बदल देता है, एकदम से बदल, क्यों विषय बदला, क्या कारण, क्यों उसने एकदम से विषय बदल दिया, कारण ये है ताकि वो समझ जाए कि सेवक जो नियुक्त किए जा रहे हैं उन सेवकों को कैसा व्यवहार हो और सेवक किस प्रकार से सेवा करें। जब यहां पर हम जैसे प्रार्थना कर रहे आने वाले दिनों के लिए, और जैसे पिछले दिनों में जो समय पे समय में एल्डर्स डीकन नियुक्त किए गए, हम लोग आने वाले दिन के लिए प्रार्थना करें, कुछ लोगों को, कुछ भाइयों को और सेवा में ऐड करने के लिए प्रभु सहायता करें कि ठीक समय पर हम उसके लिए कदम बढ़ा सकें, जरूर हम आपसे शेयर करेंगे, लेकिन हम विचार कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं और हम इस पर आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, लेकिन ये सच है, हमें समझना है। तब 17 पद से लेकर के वो क्या कह रहा है, 17 पद से थोड़ी सी बातों को आगे कहता है, 21 पद तक कह रहा है कलीसिया के में सेवकों के साथ। अब 17 से 25 में तीन बातें खास तौर से 17 से 25 के बीच, पहली बात क्या किस प्रकार से कलीसिया में सेवकों को के साथ व्यवहार करना है, कैसे सेवक होने चाहिए। दूसरी चीज, कलीसिया में सेवकों का के प्रति अनुशासन कैसा होना चाहिए। फिर तीसरी बात, कलीसिया में सेवकों का चुनाव कैसे होना चाहिए। ये तीन बातों को इन पदों में वो स्पष्ट करना चाह रहा, सिखाना चाह रहा है। जो एल्डर अच्छा प्रबंध करते हैं, और विशेषकर कैसे, विशेषकर कौन, वे जो प्रचार और शिक्षा कार्य में कठिन परिश्रम करते हैं, वे जो कहा शिक्षा में देने में और प्रचार में, प्रचार कार्य में, शिक्षा कार्य में कठिन परिश्रम करते हैं, वे दो गुने आदर के समझाए। बाइबल में बार 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 इस बात को, अगर पहला थिस्सलुनीकियों पढ़ेंगे, पहला थिस्सलुनीकियों में पौलुस इस बात की शिक्षा देता है, बहुत ही स्पष्ट उसे कहता है कैसे। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5 अध्याय उसका 12 पद, भाइयों, परंतु भाइयों हम तुमसे निवेदन करते हैं कि उनका आदर करो जो तुम्हारे मध्य कठिन परिश्रम करते हैं और जो प्रभु में तुम्हारे ऊपर नियुक्त किए हैं तथा तुम्हें शिक्षा देते हैं। एल्डर्स की डीकन एल्डर्स में दोनों में फर्क है। डीकन जो है वो बहुत सारे प्रैक्टिकल कामों में मदद करते हैं। एल्डर्स हो सकता है कुछ एल्डर्स ऐसे भी हों जो प्रचार ना कर पाए, शिक्षा नहीं दे पाए, उम्रदार हैं, अनुभव हो गया उनके पास, कलीसिया में आगे बढ़ गए, कई साल उम्र हो गई उनकी, तो शायद, लेकिन पर फिर भी उनकी प्राथमिकता यह है कि उनको शिक्षा देने में निपुण होना है, परमेश्वर के वचन की सही शिक्षा दी जानी चाहिए। और प्रभु का हम धन्यवाद देना चाहते हैं, जाइन ने शुरू से, भैया थे, भैया ने इस बात पे जोर दिया, इसीलिए हर एक को माफ कीजिएगा, हर एक को हम लोग पुलपिट नहीं देते, क्योंकि हमें मेहनत, हम चाहते हैं कि लोग मेहनत करें, और इस रीति से ये परमेश्वर के वचन के अनुसार है। उनको बार 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 इब्रानियों देखिए, वो कहता है जो तुम्हारे बीच में कठिन परिश्रम करते हैं और विशेष का शिक्षा देते हैं उनको आदर के समझो, खासतौर से जो तुम्हारे ऊपर नियुक्त हैं और तुम्हें शिक्षा देते हैं। थिस्सलुनीकियों के हमने देख लिया 5वें अध्याय में, उसके बाद ठीक है, अब कैसे करना भी हम देखेंगे। इब्रानियों का 13 अध्याय, इब्रानियों का 13 अध्याय, यहां पर भी इब्रानियों का लेखक इसी बात को कहता है। इब्रानियों उसका 13 अध्याय और उसका 17 पद, अपने अगुओं की आज्ञा मानो और उनके अधीन रहो, क्योंकि वे तुम्हारे प्राणों की ये जानकर चौकसी करते हैं कि उन्हें उसका लेखा देना है। उन्हें कार्य आनंद के साथ करने दो, ना कि आहें भरते हुए, क्योंकि इससे तुम्हें कोई लाभ ना होगा। पुराने समय में को जब आप पढ़ेंगे, पुराने समय में तो एक समय जब ऐसा आया, आगे की पुस्तक को आप पढ़ेंगे, मीका की पुस्तक को पढ़ेंगे, तो उस समय कलीसिया के जो याजक लोग थे मंदिर छोड़ छोड़ के चले गए थे, मंदिर छोड़ छोड़ के चले गए थे। क्यों मंदिर छोड़ के, उस समय स्थिति दूसरी, आज परिस्थिति दूसरी, लेकिन वो चित्रण वही है। क्यों समय, क्योंकि लोग उनकी चिंता नहीं कर रहे थे, लोग उनकी चिंता नहीं करते, अपने घर बना रहे थे, अपने घर सब कुछ कर रहे थे, अपने सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे थे, यहां तक कि जो भवन बनाने के लिए सामान जमा था वो भी अपने घर लेके चले गए थे, लेकिन उन्होंने भवन की चिंता नहीं करी, ना सेवकों की चिंता करी, और छोड़ के चले गए। तब प्रभु ने हागे नबी को खड़ा करा, उसे चुनौती दी, और तब लोग जागृत हुए, तब परमेश्वर का भवन बनाया गया, और पूरी रीति से फिर वो विधि उस तरह से चली। यहां पर वो कह रहा है कि ऐसा कार्य वो दबाव के साथ ना करें, आहें भर भर के ना करें। क्या मतलब है, अगर जो सेवक आपके बीच में परिश्रम करते हैं, शिक्षा देते हैं, आपकी चिंता करते हैं, आपकी देखभाल करते हैं, या जो आने वाले दिन में आपके साथ में ठहराए जाएंगे, आपके ऊपर आपके बीच में सेवा करेंगे, उनके उनके अंदर ये चीजें पाई जाएंगे, सो मेरी और आपकी जिम्मेदारी क्या होती है, मेरे और आपकी जिम्मेदारी हम उनके लिए चिंता कर सकें, हम उनकी देखभाल करें, केवल उनकी सेवाओं को हम ना ले लें। कई बार हम सेवाओं को लेना मांगते हैं, लेकिन सेवाओं के प्रति कोई प्रत्युत्तर नहीं देना मांगते, यहां तक धन्यवाद भी कई बार लोग नहीं देना मांगते। इस सीखना में, माफ कीजिएगा, मैं सिखाना मांगता हूं, जब आप हिंदू थे, आने जाते थे, पंडित को बुलाते थे, अब क्या नहीं कर, हम नहीं चाह रहे कि आप उसके सम्मान करें, लेकिन ये सीखना है। आज आप क्या करते हैं, कैसे, बहुत सारे लोग जो हमें सीखना है, प्रभु धन्यवाद उन लोगों के लिए जो इस बात को सीख करते हैं, मुझे और आपको सीखना और करना है, ये चीज को जानना है, लेकिन सोच सीखे परमेश्वर का वचन क्या कहता है, हमें देखना है। हाँ, कुछ करना चाहेंगे, कूड़ा करके करेंगे, बोझ समझ करेंगे, वो नहीं। और यहां पर वो कह रहा है, इसीलिए तिमोथियुस को लिखते हुए, तिमोथियुस को लिखते हुए कह रहा है, पहली बात, फिर से हम तिमोथियुस में आएंगे, घूम फिर के हम तिमोथियुस में आ जाएंगे, पहली बात वो कह रहा है कि जो विशेष करके क्योंकि पवित्र शास्त्र क्या कह रहा है, कथन क्या है, पुराने नियम का कोटेशन है, पुराने नियम का कोटेशन है लेव अवस्था में, क्या कह रहा है, दावने वाले बैल का मुंह ना मांगना और मजदूर अपनी मजदूरी का हकदार है। यहां पर जो भाई लोग सेवा करते हैं या जिनका सहयोग आपके धन से होता है, यदि आप अपना धन नियमित ना दें, आप क्या कर रहे हैं, आप मजदूर की मजदूरी नहीं दे रहे, इसको सीख रहा है। प्रभु का धन्यवाद उन भाई बहनों के लिए, प्रत्येक के लिए हम धन्यवाद देते हैं, कभी कुछ हो जाता बात दूसरी है, लेकिन ये सीखना गंभीरता है। मैं आपसे मांग नहीं रहा हूं, पर ये वचन के अनुसार मुझे करना है, और मुझे, और मैं कह रहा हूं हमारे लिए जो देने की है ना, वो एक बड़ी बड़ी आशीष है, कुड़कुड़ा के नहीं। कई बार लोगों के सामने सबसे बड़ी समस्या रहती है, सबसे बड़ी समस्या है वो सब कुछ कर लेंगे, गाली खा लेंगे, वो कर लेंगे, हाथ ठट्टा सह लेंगे, त्याग कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, लेकिन प्रभु को जब देने का समय आएगा तो उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। पर दूसरा क्रंथ में पौलुस कहता है, पहले उन्होंने अपने आप को दे दिया। जब तक आपका जीवन प्रभु के लिए समर्पित नहीं है, धन आप पर प्रभुता करेगा। जब आपका जीवन प्रभु के लिए समर्पित होगा तो आप धन पर प्रभुता करेंगे। जब आप धन पर प्रभुता करेंगे तो धन को आप चलाएंगे। जब धन आप पर प्रभुता करेगा तो वो आपको चलाएगा। और आज बहुत जगह धन आप पर बैठ करके आपको चला रहा है, और ये देखना है परिवार कैसा होना है, कलीसिया में क्या करना है। मेरे प्रियो, इस बात को सीखना है, परमेश्वर के वचन की शिक्षा है, और बार बार बात को परमेश्वर को वचन सिखाता है। आगे चल के कहता है, कहता है तब दूसरी बात, पहली बात उसका सम्मान की है, पहली बात उसके परिश्रम का प्रतिफल देने की है, पहली बात उसकी मजदूरी को चुकाने की है, पहली बात ही कहता है। हाँ, जरूर उससे पहले एक बात कह देता है वो कि सेवकों को कैसा होना चाहिए, सेवक को कठिन परिश्रम करना होना चाहिए, सेवक को शिक्षा देने वाला होना चाहिए, सेवक को समझदारी से कार्य करना चाहिए, सेवक को इस बात का होना चाहिए, सेवक के अंदर होना चाहिए। ये नहीं घर में बैठा आराम से बैठा है, सो रहा है, और उसके बाद प्रचार करने के लिए इधर से प्रचार उधर से प्रचार करा, कुछ कर दिया कलीसियों ने, वो नहीं, ऐसा नहीं। सेवक की पहले जिम्मेदारी है, जो हम सेवा करना चाहते हैं, वचन कहता है जो ये कार्य करना चाहता है वो भला करता है, लेकिन उसको तैयार होना है। दूसरी बात, तब दूसरी बात ये कि अगर वो सेवक इस तरह से परिश्रम कर रहा है तो उसकी देखभाल करना कलीसिया काम है। दूसरी बात ये कहता है 19 पद, किसी प्राचीन के विरुद्ध दो या तीन गवाहों के बिना कोई दोषारोप ना लगाया जाए। और उसका सिद्धांत क्या है, परमेश्वर ने आरंभ से कलीसिया में सिद्धांत रखा है, चाहे वो कलीसिया के विश्वासी हो, कलीसिया का सेवक हो। और प्रभु यीशु मसीह ने अभी कलीसिया बनी नहीं थी, लेकिन कलीसिया उसके स्वप्न में है, कलीसिया उसके दर्शन में है, कलीसिया उसकी योजना में है, और इसलिए उसके होते हुए उसने कलीसिया के बारे में सब कुछ स्पष्ट कहा था। और वो स्पष्टता के साथ उसने, मैं बार बार बोलता हूं, मत्ती उसका 16 अध्याय उसमें कलीसिया की स्थापना के बारे में है, किस चीज पर कलीसिया की स्थापित ना होगी, विश्वास है। उसके बाद 17 अध्याय में कलीसिया की महिमा, प्रभु यीशु मसीह है, ना व्यवस्था है, ना नबी है, प्रभु यीशु मसीह है। हम 17 अध्याय में देखते हैं रूपांतर पर्वत का। कलीसिया 18 अध्याय में कलीसिया का अनुशासन है, कलीसिया किस प्रकार से अनुशासन है। और तब वो कहता है यदि कोई भाई पाप करे, गलत करे, तो अकेले में समझा, यदि कोई अगुआ ऐसा करता है आप उसके पास जाइए, मैंने कोई गलती करी आप मेरे पास आइए, आपका अधिकार है, आप आकर बात कर सकते हैं, आपने कोई और कहा है उसके पास आप सकते हैं, अकेले में जाइए, नहीं हो, नहीं माने तो दो जनों को साथ लेके जाए, अगर ना माने तो कलीसिया से कह दे, और ना हो, लेकिन ये सच है कि बिना दो गवाहों के, एक या दो गवाहों के आप दोषारोपण ना लगाए। ये परमेश्वर वचन, हमें खुद भी कदम उठाने से पहले परमेश्वर के वचन के फ्रेम में अपने आप को रखना है। और यह है परमेश्वर हर एक को, जरूर परमेश्वर ने जिम्मेदारी दी है हमें और आपको, लेकिन हमें और आपको एक शासक, सॉरी मुझे जो अगवे उनको शासक बना के नहीं रखा है, शासक बना के वो सेवक है, वो हम भी आपके अधीनता में है, आप हमारी अधीनता में, हम आपके अधीनता में, हमें हम आपके बीच में सेवा करें, हम मूर्तियों के बीच में सेवा नहीं करें, पत्थरों के बीच में सेवा नहीं करें, हम जीवनों के बीच में सेवा करें, और इसलिए वही चीज हमारे ऊपर भी लागू होती है जो आपके ऊपर लागू है, और इसको हमें समझना है, इसको हमें देखना है। तो ये कह रहा है किस रीति से, और वो तब क्या कह रहा है, अगर ऐसा है जो लोग पाप करते रहते हैं उन्हें सबके सामने डांट, जिससे अन्य लोग भी पाप करने से डरे। अगर सेवक कोई ऐसा है या कलीसिया में कोई ऐसा है तो उसको डांटना भी है। बाइबल में बहुत इसमें कई बार डांट 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 लिखा है। हाँ, कहीं पर लिखा है कि कहीं पर मत डांटना। अब जैसे पहले हमने पद पढ़ा था, वृद्धों को कठोरता से मत डांटो, क्योंकि उनकी उम्र है, उनका समय है, उनका स्थान, कैसे उनसे व्यवहार करना, उनका आदर करना है। लेकिन यहां पर किस प्रकार से तुम्हें डांटना है। कई बार लोगों को डांट से चिड़ हो जाती है, या समझाने से चिड़ हो जाती है, या बोलने से चिड़ हो जाती है, और एकदम से उनका व्यवहार बदल जाता है। ये अच्छा नहीं, उन्होंने अपने आप को परमेश्वर के स्वभाव के अंदर नहीं रखा हुआ है। हमें सीखना है, प्रार्थना मांगनी है। तब कहता मैं तुम्हें परमेश्वर यीशु मसीह के चुने हुए स्वदूतों में उपस्थित में दृढ़तापूर्वक चेतावनी देता हूं। अब क्या कह रहा है, किसके सामने चेतावनी देना? प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, परमेश्वर मसीह यीशु और उसके चुने स्वदूतों चेतावनी देता हूं कि इन सिद्धांतों का पालन निष्पक्ष होकर कर और पक्षपात की आत्मा से कुछ न कर। हमारा परमेश्वर पक्षपाती परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर ने अगर जगत से प्रेम किया तो हर पापी से प्रेम किया, उसने पक्षपात नहीं किया, उसने पक्षपात नहीं किया। हम सब पाप में थे, हम सब नाश हो रहे थे, हम सब अंधकार में थे, हम सब बर्बाद हो रहे थे, हमारे लिए कोई आशा नहीं थी। लेकिन परमेश्वर ने जगत से अर्थात मुझसे और आपसे पूरी दुनिया से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने आप को दे दिया ताकि जो कि उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु आनंद जीवन पाए। उसने ये नहीं कहा, अच्छा इसने इतना पाप किया है तो इसलिए मैं बलिदान हो रहा हूं, इसने इतना बड़ा पाप किया है तो इसके लिए मैं बलिदान नहीं हूंगा, इसने इतना, उसने इस पाप जो भी पापी सबके साथ उसने बिना पक्षपात के अपने आप को मेरे और आपके पाप के लिए अपने आप को क्रूस पर बलिदान कर दिया। वो मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। और मेरे प्रियो ये सच है, अब ये मेरे और आपके ऊपर है। यदि मैं उसके बलिदान का प्रत्युत्तर दूंगा तो मैं उसके प्रति उस उद्धार को प्राप्त करूंगा, उस आशीष को पाऊंगा। अगर मैं तिरस्कार करूंगा तो मैं उसका न्याय को प्राप्त करूंगा। अब उसने मेरे पर छोड़ दिया, जगत के ऊपर छोड़ दिया, लोगों पर छोड़ दिया, उसने बिना पक्षपात के अपने आप को बलिदान कर दिया। और वही स्वभाव, वही जीवन, वही आचरण, वही कार्य, वही इच्छा, वही मनसा हमारे जीवन में आनी चाहिए, यह हमारे जीवन चाहिए। और इसलिए हमें देखना है और समझना है। कह रहा ऐसा है 22 पद में क्या चेतावनी है, बहुत सावधान है। अति शीघ्रता से किसी पर हाथ रखकर दूसरों के पापों में सहभागी सहयोगी ना हो, अपने आप को पवित्र बना रख। शीघ्रता से हाथ नहीं रखना, क्या मतलब है? शीघ्रता से लीडरशिप मत देना, अगुआपन शीघ्रता से। अच्छा ठीक है, ये मेरे को बहुत प्यार लगता है, मेरी वाई वाई करता है, मेरे साथ रहता है, मेरे मानता है, मेरे कहता है ठीक है भैया तुम वही बन जाओ। नहीं नहीं नहीं, यह नहीं, मुंह देख कर नहीं, यहां न्याय नहीं हो। वो ये कह रहा है अगर तू ऐसा करे तो तू पक्षपात करेगा, पक्षपात करेगा। सावधान है ना, पक्षपात ना करना। उन चीजों को देख लेना, उन गुणों को देख लेना, उन स्वभाव को देख लेना, उन चरित्र को देखना क्या जो परमेश्वर के वचन के अनुसार है, इससे पहले कि तू लोगों को चुने, ये लोगों को देखे, लोगों को करे नियुक्त करे, इस चीज का ध्यान रखना। और मेरे प्रियो यही कारण है कलीसियाएं बहुत समय तक प्रार्थना करती हैं, देखती हैं, बातचीत करती हैं, विचार करती हैं और तब आगे बढ़ती हैं। ये चीज है और ये है, और हम प्रयत्नशील रहते हैं कि प्रभु के वचन के अनुसार कर सके, जल्दी पे हाथ ना रखना। कोई कह रहा अगर ऐसा है, एक व्यक्ति आलसी भी है, सुस्त भी है, झगड़ा करने वाला भी है, घर का अच्छा संचालन करने वाला नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं, फिर भी हम उसको कर, क्योंकि वो मेरा मित्र है, मेरे को ज्यादा पूछता है, मेरे ज्यादा देखभाल करता है, मैं उसको करूं तो मैं क्या कर रहा हूं, गलत कर रहा हूं, पक्षपात है और उसके पापी कारण मैं भी पापी हूं। मुझे सावधान रह करके हमेशा सच्चाई के साथ उनको सिखाने के लिए, समझाने के लिए तैयार रहना है, ये सामना करने तैयार रहना। और तब 23 पद में कहता है, क्या कह रहा है इस पद में, बहुत सारे लोग 23 पद को लेके लेके चलते रहते हैं। वो कह रहा है 23 पद को, क्या कह रहा है, अरे भैया अब केवल तेरे पेट में बीमारी है, तकलीफ है, सब कुछ है, अब से केवल जल ही का नहीं परंतु पेट और वारंवार होने वाले रोग के कारण थोड़े दाखरस का भी उपयोग कर लेना। ये तो छूट मिल गई, थोड़े ही तो पीते हैं, केवल पी करके सो जाते हैं और कुछ नहीं था, किसी में परेशान थोड़ी ना करते हैं, है ना। बाइबल में लिखा थोड़ा पी लेना और सो जाना, घर में परेशान मत करना, बीवी को गाली मत देना, बच्चों को मारना मत, पड़ोसी को ना मारना, चल पी लेना, ये नहीं कह रहा। वचन को लेकर अपने लिए बहाना मत बनाइए, वचन को लेकर अपने लिए आड़ मत बनाइए, वचन को लेकर के उसका तोड़ मरो के मत रखिए। पौलुस ये नहीं कह रहा, तिमोथियस ठीक है उस समय की बात सोचना समझना चाहिए, परमेश्वर के वचन में स्पष्ट रूप से लिखा है, हम उत्पत्ति से पाते हैं। उत्पत्ति में अगर नूह ने गलती करी थी, नूह ने नशा किया था और नशा करके उसका क्या हुआ था, उसका नंगापन दिखाई दिया था और उसका कारण क्या हुआ, पीढ़ी में उसका प्रभाव पीढ़ी में पड़ा, उस पाप का प्रभाव नूह को अपनी पीढ़ी तक उसने पास ऑन कर दिया। ये मेरे को ध्यान रखिए मेरे प्रियो, परमेश्वर को वचन को गंभीरता से लिए, पूरी बाइबल बड़ी है शिक्षा के लिए, चार अलग अलग शब्द यूनानी भाषा में एक दाखरस के लिए है, चार अलग अलग शब्द, और चारों अलग अलग शब्दों का अर्थ अलग है, उपयोग का समय अलग है, ये समय अलग। लेकिन उस समय एक प्रथा थी। प्रथा क्या थी? कल भी हम लोग सुबह डिवोशन में पढ़ रहे थे, व्यवस्था विवरण में व्यवस्था ये थी कि जब भी कोई मेहमान आता था या कोई भी अवसर होता था, जो आनंद का या ना उसके दूसरे अध्याय में विवाह में क्या कम हो गया था, दाखरस कम हो गया था, वो ताजा दाखरस बनाया जाता था और लोगों को पिलाया जाता था, उसको नशा के रूप में नहीं चेंज किया जाता था, उसको नशा। संभवतः यहां पर ऐसा होता है कि जैसे आप दवाई पीते हैं, दवाई में कुछ अल्कोहल होता है, लेकिन कह दीजिए भैया मैं पूरी बोतल एक साथ पी लूंगा ठीक हो जाऊंगा, कहां पहुंच जाएंगे, खुदागंज पहुंच जाएंगे, ठीक है, पता चला अभी आप दूसरों को लेके जा रहे हैं, चार जन आपको लेके जाएंगे, फिर सावधान रहिए, बहाना मत बनाइए। वो ये कहना चाह रहा है कि तेरी जो बीमारी है उसका तू उपचार कर। आप कहेंगे हाँ अंकल पॉलुस ने लिखा है तो मेरे को तो इसी से ठीक होती है मेरी बीमारी, तो इसी से मैं, मेरे को नींद नहीं आती है, मैं बहुत परेशान था, लेकिन जहां एक प्याला ले लेता हूं बहुत अच्छी नींद आती है। पॉलुस ये नहीं कह रहा, बहाना मत बनाइए। एक एक दो पद देख लीजिए, नीति वचन उसका 20 अध्याय एक पद, बहुत सारे पद है, अगर आपको चाहिए आप बहुत सारे पद मिल जाएंगे, और नीति वचन तो भरा हुआ है, कैसी दशा में। नीति वचन 20 और उसका एक पद क्या कह रहा है, दाखरस हंसी उड़ाने वाला और मदिरा उपद मचाने वाली है, जो कोई उससे मतवाला होता है वो बुद्धिमान नहीं। 23 अध्याय, नीति वचन बहुत सारे पद हैं लेकिन केवल एक दो पद ही मैं आपके सामने लाऊंगा। 31, शराब जब लाल दिखाई देती है, जब वो प्याले में लुभावनी लगती है, जब वो धार के साथ उंडेली जाती है, तब तू उस पर दृष्टि ना करना, अंत में वो सर्प के समान दस्ती और करैत के समान काटती है। समझे, तेरी आंखें विचित्र बातें देखेंगी और तेरे मुंह से उल्टी सीधी बातें निकलेंगी। सावधान रहिए, परमेश्वर वचन बहुत सारे स्तर है। नशे को अपने जीवन का आदत मत बनाइए, चाहे वो दारू के द्वारा हो, चाहे सुपारी के द्वारा हो, चाहे किसी और के द्वारा हो, चाहे किसी चीज के द्वारा हो, मत बनाइए। परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो इसको नाश करेगा मैं उसको नाश करूंगा, और परमेश्वर ने आपकी देह को पवित्र आत्मा का मंदिर बनाया। अभी पिछले दिनों में एक भाई यहां पर आया, उनको कुछ तकलीफ थी, और जब वो आए, जैसे ही वो आए मैंने कुछ बोल दिया, परमेश्वर का धन्यवाद हो उनके घर से मुझे पता चला, खुशी हुई कि गए डॉक्टर ने, डॉक्टर को दिखाया उन्होंने कुछ कुछ, मैंने कहा भैया आप अपने जीवन के साथ खेल रहे हैं, जो कुछ मुझे कहना था मैंने कह दिया, पर बाद में मुझे उनके घर से मालूम चला कि उसी दिन से उन्होंने वो तंबाकू को छोड़ दिया खाना, प्रभु धन्यवाद हो, अच्छी बात है। ये देह जो हमारी परमेश्वर ने दी है उसको मंदिर है। अंतिम बात, तब यहां पर कह रहा है कुछ लोगों के पाप बिल्कुल प्रकट होते हैं पहले ही से न्याय के लिए पहुंच जाते हैं, परंतु अन्य लोगों के पाप बाद में प्रकट होते हैं। नशा क्या करता है? ठीक है आप कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप उस नशे के कारण, उस बातों के कारण उनके मन छिप के गुप्त में पाप में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, वो प्रकट तो होगा, आज नहीं हो कल होगा, तुरंत कुछ तो है, पी और चले गए सड़क पे, वो दम मचाने लगे, इधर नाच रहे उधर नाच रहे, तो सामने है खुल गया, हमने तो पी ली आज, अब तो हम राजा बन ही गए हैं, सड़क भी हमारी है, मोहल्ला भी हमारा है, बनो राजा बेटा कोई बात नहीं, लेकिन कुछ है, लेकिन मेरे प्रिय बचता कोई नहीं, बचेगा कोई नहीं, बचेगा नहीं, और पाप की मजदूर तो मृत्यु है, जो प्राणी पाप करेगा निश्चय मर जाएगा। पाप का साथ परमेश्वर समझौता नहीं करता, पाप से परमेश्वर व्यवहार करता है, चाहे कैसे पाप क्यों ना हो, और पाप को हल्का मत लीजिए, चाहे हम सेवक हैं, चाहे हम साधारण विश्वासी हैं, चाहे कुछ भी है, किसी भी प्रकार के पाप को हल्का मत लीजिए। आप नहीं जानते, मैं नहीं जानता किस समय परमेश्वर का क्रोध मेरे और आपके ऊपर आ जाए। अनुग्रहकारी है, विलंब से कोप करने वाला है, करुणा में है लेकिन कोप करता है, चाहे वो विलंब से करे। ये देह ये जीवन परमेश्वर के लिए है, परमेश्वर बनाया है इस जीवन के द्वारा, उस सेवक के द्वारा, चाहे विधवा हो, चाहे वृद्ध हो, चाहे युवा हो, चाहे जवान हो, चाहे कलीसिया के सेवक हो, चाहे कुछ हो, उसके द्वारा परमेश्वर की सेवा होनी है, एक दूसरे के लिए आशीष का कारण होना है, परमेश्वर की महिमा होनी है, परमेश्वर का प्रगटीकरण होना है, और परमेश्वर हमारे जीवन के द्वारा, हमारे व्यवहार के द्वारा, हमारे कार्य के द्वारा प्रदर्शित होना है। इसलिए पाप को हल्का मत समझिए, यह परमेश्वर की चेतावनी है। आगे जब क्यों कहना जानता क्लोजिंग पद, तो कहता है इसी प्रकार भले कार्य में भले कार्य भी प्रकट होते हैं, और जो ऐसे नहीं वो गुप्त नहीं रह सकते। भले कार्य, यदि परमेश्वर का वचन आपके जीवन में काम कर रहा है, यदि परमेश्वर आपके जीवन में काम कर रहा है, यदि आप परमेश्वर के साथ सहभागिता में है, परमेश्वर के साथ संगति में है, परमेश्वर के साथ आपका जीवन है, परमेश्वर के मार्ग में बढ़ रहे हैं, परमेश्वर का आपके जीवन की प्राथमिकता है, आपके द्वारा परमेश्वर की महिमा के लिए भले कार्य प्रकट होंगे। आपका बोलना चलना, आपका स्वभाव, आपकी इच्छाएं, आपकी मनसाएं, आपकी बोलचाल, सब कुछ परमेश्वर को महिमा देंगे। मेरे प्रियो, यहां पर पौलुस बात कहता है, नहीं तो क्या होगा, कोई चीज गुप्त नहीं रहेगी। एक दिन हमें परमेश्वर के सामने खड़ा होना होगा, और वो हमारे हर बात का लेखा लेगा, चाहे जो बातें हमने मुंह से कही हैं, जो हमने गुप्त में करी है, वो एक दिन खुलेपन में होगा। मेरे प्रिय, बाइबल झूठ नहीं बोलती। अभी धीरे धीरे बहुत सारी चीजें चेंज हो रही है, आपको शायद मालूम होगा। अभी हम लोग लेके चलते थे, धीरे धीरे आने लगा, पासपोर्ट कहीं आना था पासपोर्ट लेके चलते थे, पहले पासपोर्ट पेपर में भरा जाता था सब कुछ, आज की किताब दे दी गई, अब किताब भी खत्म हो रही है, अब क्या हो जाएगा, एक छोटी सी चिप मिल जाएगी, उस चिप में सारा रिकॉर्ड है। वो बुद्धि किसने दी है? परमेश्वर ने मनुष्य को दी है। और मैं यही सोचता हूं, जब यहां पर संसार में हम दिन पर दिन उन चीजों को देख रहे हैं, तो एक दिन आएगा जब खड़े हम प्रभु के सामने खड़े होंगे, उसके सामने हम जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं, कौन सी चिप उसने रखी है, खोली जाएगी और सारा सारा मुझे और आपको साधन देना है, डरना है, प्रभु को अनुग्रह मांगना है। मेरे प्रियो, परमेश्वर मुझसे और आपसे प्रेम करता है। तो यहां पर पौलुस इस बात को कह रहा है, कलीसिया में किस प्रकार से हमें जीवन को व्यतीत करना है, किस रीति से। परमेश्वर ने उद्धार दिया है, परमेश्वर ने पक्षपात नहीं किया, परमेश्वर ने क्षमा दी है, परमेश्वर ने अपने सदस्य अपने कलीसिया का अंग बनाया, अब मुझे और आपको साधन होकर इस कलीसिया में जीवन व्यतीत करना है, एक दूसरे की चिंता करनी है, अपनी जिम्मेदारी को पूरा करना है, अपने उत्तरदायित्व को पूरा करना है, सेवकों को सावधानी से रहना है। सेवक करना गंभीर बात है, यह हल्की बात नहीं है, क्योंकि सेवक का न्याय और अधिकारी से होगा, और इसलिए मुझे और आपको डरना है और कांपना है और भयभीत होना है। आइए हम प्रार्थना करें।